समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नास। आकाशवाणी स्टूडियो से आज की इस हसीन सुबह का आगाज करते हैं और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज आज सवेरे विद मी शगुन चोपड़ा एंड फरहत नास। वेल, वी आर थ्रिल्ड टू बिगिन आवर प्रोग्राम। लेट्स टेल यू अबाउट इट। फर्स्ट we'll begin with the national international news, then metro city updates follow, and then we also will be exploring the historical information which is related to today. Today it's 19th of April 2026 and we'll tell you what's special about this day. All of this coming up in the next 30 minutes. So stay tuned with us and we are beginning now with the headlines.
जी शगुन, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। राष्ट्र को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों ने महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप किया है उसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। विपक्ष ने संसद और राज्य विधानसभाओं में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया और उसे पास नहीं होने दिया। अपने संबोधन में उन्होंने यही बात कही और ये कहा कि देश की महिलाओं की संसद और राज्य विधानसभाओं में बढ़ती भागीदारी को वो लोग रोक नहीं पाएंगे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने संकल्प पर अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि यद्यपि ये विधेयक को पारित होने के लिए आवश्यक 66% मत प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन देश की सभी महिलाओं का आशीर्वाद उनके सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया और कहा कि सरकार के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका और जिसके लिए वो सभी माताओं और बहनों से क्षमा मांगते हैं।
वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन बिगिन्स हिज 2-डे ऑफिशियल विजिट टू श्रीलंका। द विजिट मार्क्स द फर्स्ट एवर बायलैटरल ट्रिप बाय एन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट टू द आइलैंड नेशन। The visit comes amid renewed high-level engagement between the two neighbors. More from our correspondent.
India's Vice President C.P. Radhakrishnan is set to arrive in Colombo today morning as he commences a landmark visit to Sri Lanka. He is scheduled to meet Sri Lanka's President Anuradha Dissanayake and Prime Minister Harini Amarasuriya as well as other leaders. He will also interact with leaders of Indian origin Tamil community and Tamil leaders from the northern and eastern regions of the island nation. In Colombo, the Vice President will address the Indian diaspora and in a virtual ceremony hand over homes built under India's housing initiative, taking the total to 50,000 with more underway. On the second day, he travels to Nuwara to visit project sites and interact with local communities. The visit is expected to further deepen long-standing cultural and people-to-people ties between the two nations. Ahmed Muin Farooqi, Akashwani News, Colombo.
प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार वो सुबह 11 बजे बरबोजा में रैलियों को संबोधित करेंगे, उसके बाद दोपहर 12 बजे पुरुलिया और झारग्राम में और फिर दोपहर बाद पश्चिम मिदनापुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। वे कूचबिहार के शीतकुलच्ची में एक जनसभा करेंगे और दोपहर के आसपास जलपाईगुड़ी में एक रोड शो करेंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोलकाता पहुंच चुके हैं। वे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में वीरभूम में रैलियों और रोड शो में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दोपहर बालूरघाट में एक रोड शो का नेतृत्व करेंगे। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज इरोड जिले के शिवगिरी में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य का दौरा कर चुके हैं। वहीं विपक्ष नेता राहुल गांधी ने उत्तरी जिलों में प्रचार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के लिए कोयम्बटूर, तिरुप्पुर और नीलगिरी में चुनाव अभियान में हिस्सा लिया।
यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान कंडक्टेड अ हाई लेवल रिव्यू ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग खरीफ सीजन एंड द पोटेंशियल एल नीनो इम्पैक्ट। वी हैव अ रिपोर्ट।
During the review meeting yesterday, Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that farmers' welfare is of the utmost priority and added that the government is fully prepared to address the potential El Nino impact. He directed Agricultural Secretary and concerned senior officials to ensure that all necessary arrangements are made well in advance to safeguard farmers' interests. Mr. Chauhan underlined that the government is moving forward with complete preparedness, taking India Meteorological Department's weather-related forecast seriously. He stated that through coordinated efforts of the central and state governments, better water management, advanced technologies, expansion of irrigation facilities, and climate resilient agricultural measures, the impact of potential challenges can be significantly controlled. With Priya's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
ईरान ने कहा है कि जब तक ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमरीका द्वारा जारी नाकेबंदी को युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी है कि जलडमरू मध्य के पास आने वाले किसी भी जहाज को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा और उसे निशाना बनाया जा सकता है। ये घटनाक्रम शुक्रवार को जलडमरू मध्य को अस्थायी रूप से फिर से खोले जाने के बाद हुआ है। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सभी मुद्दों का पूर्ण समाधान होने तक नौसैनिक नाकाबंदी लागू रहेगी। इस बीच जलडमरू मध्य में गोलीबारी की घटनाओं की भी खबरें हैं जिनमें कुछ वाणिज्यिक जहाजों को नुकसान पहुंचा है। युद्धविराम के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी हैं।
On to sports now. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 10 runs at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad last night. So put into bat first, Sunrisers Hyderabad posted 194 for 9 in their stipulated 20 overs with 59-run innings each from Abhishek Sharma and Heinrich Klassen. For Chennai, Anshul Kamboj and Jamie Overton picked up 3 wickets each. In reply, Chennai Super Kings could only manage 184 for 8 in their 20 overs. For Hyderabad, Ishan Malinga picked up 3 wickets while Nitish Kumar Reddy took 2. Malinga was awarded the player of the match. In another match, Delhi Capitals defeated Royal Challengers Bengaluru by 6 wickets in a league match at M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru yesterday. Chasing a target of 176, Delhi scored 179 for 6 with 1 ball to spare. And now in today's fixture, Kolkata Knight Riders will take on Rajasthan Royals at Eden Gardens in Kolkata at 3:30 p.m. while Punjab Kings will face Lucknow Super Giants in Chandigarh at 7:30 p.m.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का। सबसे पहले बात चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद की खबरों के लिए हम शगुन से रुक कर लेते हैं।
एग्जैक्टली फरत, वी विल बिगिन विद चेन्नई। जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक हैज सेड दैट रिवर्स, लेक, सी एंड वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। Delivering a lecture at Chennai, he said that the pollution affects the poor and weaker sections of the society and not the affluent ones. He said that there should be a scientific temper to understand the amount of pollution in water bodies. Another update from Chennai. Applications for admissions under the Right to Education Act for 2026-27 will begin on Monday, and the Education Department has instructed schools to open the online application window. Parents are requested to apply online at tnschools.gov.in. So rte.tnschools.gov.in between April 20 and May 18. Parents who are unable to apply online may visit the respective schools or education offices to apply. The final list after scrutinization will be released on 20th May, and admissions will be made through draw of lots on 22nd May.
और शगुन, अब राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्यबल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। पिछले महीने की 27 तारीख को इस महीने की 10 तारीख तक 15 दिनों की अवधि में अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में 162 निरीक्षण किए और 64 उल्लंघन पाए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों पर 25 निरीक्षण, औद्योगिक क्षेत्रों में 28 निरीक्षण और डीजल जनरेटर सेट संबंधित 109 निरीक्षण शामिल हैं। कार्यबल ने डीजल जनरेटर, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और सड़क धूल नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कल हरित मंथन 2026 के नेशनल हैकाथॉन का उद्घाटन किया। ये पहल दिल्ली विकास प्राधिकरण और उद्यमोदय फाउंडेशन द्वारा दिल्ली के पारिस्थितिकी भविष्य के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। और इस वर्ष हज के लिए 371 हज यात्रियों का पहला जत्था कल नई दिल्ली से सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हुआ। जायरीन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मक्का के लिए रवाना हुए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ श्रीवत्स कृष्णा ने पहली उड़ान को रवाना किया। उन्होंने सुगम, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण यात्रा के लिए सभी जायरीन को शुभकामनाएं दी।
So where 4 cheetahs from South Africa arrived at Kempe Gowda International Airport at midnight and were received by Forest Minister Ishwar B. Khandare. After arriving in Bengaluru from Kalaburagi via Hyderabad, he went straight to the cargo terminal to welcome the animals brought for Banarghatta Biological Park. He directed officials and veterinary staff to ensure proper quarantine, a prescribed diet for 30 days and thorough health checks before safely shifting them to Banarghatta, this biological park. Noting that cheetahs once found in Karnataka's forests have now disappeared, he emphasized giving the public an opportunity to see them in zoos and instructed authorities to prioritize their safety. Another update there, Karnataka is facing a severe heat wave and the temperatures, they are rising sharply across districts. North Karnataka regions like Kalaburagi, they are recording 44 to 45 degrees Celsius. That's quite a lot. While Raichur, Ballari and Vijayapura have crossed 40 degrees Celsius. And even relatively cooler districts such as Bagalkot, Koppal and Bidar, they are consistently seeing high temperatures now. So residents are advised to avoid direct sun exposure during peak afternoon hours and also to drink fluids constantly even without feeling thirsty and avoiding, you know, caffeine-related drinks.
जी.
This increases dehydration.
और अब हम लोग महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और रायगढ़ पेन विकास केंद्र के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. पेन तालुका में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाली यह परियोजना प्रमुख बंदरगाह क्षेत्रों से कनेक्टिविटी के साथ रणनीतिक रूप से स्थित होगी और इसे एक आत्मनिर्भर टाउनशिप के रूप में परिकल्पित किया गया है. हस्ताक्षर समारोह में महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी सहित वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे. वहीं शिवसेना की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने कल मुंबई में महिला आरक्षण विधेयक के खारिज होने के विरोध में प्रदर्शन किया और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन को निशाना बनाया गया. नारा लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपनाया है. और वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 19 से 22 अप्रैल के बीच तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है. विभाग के अनुसार पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. वहीं 20 और 21 अप्रैल को बारिश तेज होगी और 22 अप्रैल तक थोड़ी सी गर्मी में कमी आएगी.
Now we will turn our attention to Hyderabad. Telangana Labour Minister Vivek Venkataswamy has announced that freed bonded labourers will receive top priority in the allotment of Indirama houses. Speaking at the conclusion of a state-level workshop on human trafficking and bonded labour prevention, the minister emphasized the government's commitment to rehabilitating those rescued from exploitation. Between 2021 and 2025, authorities rescued 673 individuals across sectors, including agriculture and domestic services. Minister Venkataswamy noted that these figures highlight the ongoing struggles of the state's most vulnerable populations. He assured that the government is prepared to issue a special government order to guarantee housing for survivors and urge victims to approach him or local MLAs directly if they face any hurdles. Regarding child labour, the minister called for a compassionate approach, urging police to treat these cases as humanitarian issues rather than mere law and order violations. He specifically lauded the Nalgunda police for a recent successful rescue operation in Devrakunda. To further combat forced labour, the state has launched a 24/7 toll-free helpline 806-94-34343 and encouraging citizens to report instances of exploitation immediately as part of a broader mission to eradicate the practice.
और अब कोलकाता की बात की जाए. कोलकाता की विशेष एनआईए अदालत ने मालदा के मोथाबारी में 7 न्यायाधीशों के साथ हुई बदसलूकी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कल सुनवाई के दौरान आरोपियों ने जमानत मांगी जबकि एनआईए ने न्यायिक हिरासत की अपील की जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. श्रोताओं, वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का. तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. आज दिन भर बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में आसमान साफ रहेगा लेकिन दिन में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
Well, Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. Minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The minimum temperature will be around 28 degrees Celsius and maximum will be around 41 degrees Celsius. So this was all about weather.
और श्रोता, अब हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास जगत की तरफ रुख करते हैं. आज 19 अप्रैल 2026 है, तो शगुन सबसे पहले क्या है आज खास?
Well, today on April 19, 2026, World Liver Day is observed and the theme for this year is Solid Habits, Strong Liver. So this global initiative highlights the importance of liver health, focusing on preventing diseases like fatty liver through healthy lifestyles. And key awareness includes early detection and reducing alcohol to combat rising metabolic liver disorders. Well, we also have a detailed report, so let's listen into that.
The liver, the largest and most intricate internal organ, resides in the upper right quadrant of the abdomen. Often overshadowed by its more visible counterparts, the liver plays a critical role in human physiology, acting as the body's primary metabolic and detoxification center. Understanding its diverse functions is important to appreciate its vital contribution to overall health. Your liver is a powerhouse. It filters blood, breaks down food, stores energy, and keeps your body in balance. But today, one-third of the global adult population is living with a condition called metabolic dysfunction associated steatotic liver disease, or MASLD. Often linked with weight, diet and lifestyle, MASLD can stay silent for years, but over time it may lead to scarring, fibrosis, cirrhosis or advanced fibrosis and loss of some of the liver function or even liver cancer. The good news? Well, small steady lifestyle changes can make a big difference. Our 2026 campaign, Solid Habits, Strong Liver, highlights four solid habits that keep your liver strong: eating a balanced diet, staying active, reducing alcohol intake, and getting regular liver checks. By making these habits part of your daily life, you can take control of your liver health and prevent serious complications.
बिल्कुल. और जिस तरीके से आज की दिनचर्या होती जा रही है शगुन, उसमें अपने आप को सेहतमंद रखना बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि आप जब भी टेस्ट करवाइए तो लिवर फैटी तो अक्सर लोगों की रिपोर्ट में दिखाई देता है. और उसका एक कारण ये है, डायबिटीज हो रहा है, जंक फूड लोग यूज कर रहे हैं उसके, और यहाँ तक कि बच्चों में भी जो है वो लिवर की समस्या उत्पन्न हो रही है.
सिचुएशन इज ग्रेव एंड द ट्रूथ इज दैट योर लिवर एक्ट्स एज द बॉडीज पावर हाउस, परफॉर्मिंग ओवर 500 फंक्शंस टू कीप यू फंक्शनिंग एट योर बेस्ट. And this ranges from filtering toxins to processing nutrients. Healthy liver is essential for overall well-being, right? So let's use Liver Day, World Liver Day, as an opportunity to start conversations and raise awareness and thereby encouraging healthy lifestyle.
बिल्कुल. और लिवर को हेल्दी रखने के लिए आप वजन का जो है वो नियमित रख सकते हैं. इसके अलावा जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको उसमें कमी लानी होगी. इसके अलावा तली भुनी चीजें जो हैं वो भी कम करनी होगी, ताकि आपका जो लिवर है वो सेहतमंद रहे.
Well, right, and regular physical activity, moderate exercise, it helps lower fat levels in the liver even without significant weight loss. And as you said, reducing consumption of processed foods and unhealthy fats. So we should prioritize high fiber foods, fruits and vegetables to support liver function. And because this condition, the liver, actually rarely shows early symptoms, so experts, they urge that regular checkups, especially for those with diabetes, obesity or a family history of liver disease, it should always get checked regularly.
बिल्कुल. जान है तो जहान है, तो इसलिए अपना खास ख्याल रखें. और अब आइए इतिहास में कुछ और दर्ज घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं. आज का दिन भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था.
How great. Well, yes, the first Indian satellite, Aryabhatta. The satellite, it provided technological experience in building and operating a satellite system. It was launched by Russian launch vehicle Interkosmos.
बिल्कुल. और 1977 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था.
We are going back. In 1910, Anant Lakshman Kanhere, revolutionary, was hanged.
1999 में बीबीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रिका आरंभ करने की योजना की गई.
In 1950, Shyama Prasad Mukherjee resigned. He was the first minister of Central Cabinet.
सन 2003 में चीन के महिला भारोत्तोलक बांग मिंग चान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया.
We are going back 5 years. In 1998, Kottayam in Kerala becomes the first district in India to complete computerization of the taluk offices, connecting them with the district headquarters.
सन 2006 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग को उनके द्वारा लाया गया चांद का टुकड़ा भेंट किया गया और सन 2007 में द विजार्ड ऑफ आईडी सीरीज के कार्टूनिस्ट ब्रैंड पार्कर का आज ही के दिन निधन हुआ. और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम लोग याद कर लेते हैं.
जी,
तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन कलाकार सुरेखा सीकरी की. वो मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं. वर्ष 2018 में बॉलीवुड फिल्म बधाई हो और धारावाहिक टेलीविजन शो बालिका वधु के लिए सुरेखा सीकरी को जाना जाता है. तो क्यों ना बालिका वधु का ये डायलॉग सुन लेते हैं जो घर घर में काफी लोकप्रिय रहा.
राइट. आज आपका जन्मदिन है.
जगदीश के दादो साकी बरसी है और हम सब उनका श्राद्ध करके वापस आ रहे हैं. हमारे जन्मदिन से ज्यादा मनहूस और कोई दिन ना है हमारे लिए. हमारे जन्म की तारीख फूटे भाग की याद दिलावे मने परसों पहले भूल गई थी. कह मिला जे अशुभ घड़ी याद दिला के.
Wow, one of the most powerful performers, well, a legend in silence, a storm in stillness. So she had a command both on stage and screen with unmatched intensity, and we can hear it rightly here. Well, she has also won numerous awards. Well, if I mention that first, and she has been the National School of Drama alumna as well.
बिल्कुल शगुन, आपने एनएसडी की बात करी तो हम आपको बता दें कि नसरुद्दीन शाह की क्लासमेट रह चुकी थी ये. दोनों ने जो है एक साथ ही एनएसडी में 1971 में पास आउट किया. और इसके अलावा थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते उन्होंने बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक रोल भी किए जो काफी लोकप्रिय रहे, जिसमें तमस 1988 में आई जी, मम्मोर 1994 में, और बधाई हो जैसा कि हमने जिक्र कर ही दिया है, दादी दुर्गा देवी कौशिक का उन्होंने किरदार निभाया, और बालिका वधु टीवी सीरियल दादी सा का किरदार तो हमने सुन ही लिया. और इसके अलावा जुबेदा में सरदारी बेगम का भी किरदार उन्होंने बखूबी अदा किया.
एंड यू वर मेंशनिंग बधाई हो, एंड दिस वाजंट हर रोल, वाजंट जस्ट सेलिब्रेटेड, इट वाज सियर्ड इनटू मेमोरी. एंड वेल, आई वाज मेंशनिंग द अवार्ड्स, लेट मी मेंशन दैट नाउ. नेशनल अवार्ड्स फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तमस मामो बधाई हो, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, एंड न्यूमरस टीवी एंड फिल्म ऑनर्स एज वेल टू हर नेम.
और उनका मानना था कि एक्टिंग के लिए उम्र, लुक्स, हीरोइन का टैग कुछ नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है तो सिर्फ हुनर. अगर आपके अंदर हुनर है तो आपकी पर्सनालिटी चाहे कैसी भी हो, खूबसूरती कैसी भी हो, आप जरूर छा जाएंगे. और बाकी उन्होंने अपने किरदारों से वो दिखा दिया.
ट्रू फरत, एंड शी बिकेम, एंड इन डूइंग सो शी बिकेम अनफॉरगेटेबल. राइट. Today, listeners, we are also remembering a physicist, a pioneer in crystallography and magnetism, piezoelectricity, radioactivity, mainly Pierre Curie, the physicist. In 1903, he received the Nobel Prize in Physics with his wife Marie Curie and Henri Becquerel. And this was in recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomenon and discovered by Professor Henri Becquerel initially. And this win... With this win, the Curies became the first ever married couple to win the Nobel Prize, launching the Curie family legacy of 5 Nobel Prizes. So Pierre Curie's scientific rigor and inventive spirit led to rapid recognition. His experiments on the magnetic properties of materials resulted in the formulation of Curie's law and establishing a quantitative relationship between magnetization and temperature. His work bridged theoretical and experimental physics, combining measurement with an intuitive grasp of natural laws.
और आज के दिन शगुन हमें अलविदा कहा था सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे ने. काफी ये लोकप्रिय रही मराठी थिएटर में, इन्होंने बखूबी काम किया और डॉगी, दहालवी, कासव का निर्देशन, संहिता, बहुत सारी मराठी फिल्मों का इन्होंने किरदार निभाया उसमें. और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणियों में भी इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं.
We will now tell you about Charles Darwin, the biologist and the geologist, best known for his evolutionary contributions to the science of evolution. He proposed the theory that all species of life have descended over time from common ancestors through a process that he called natural selection. And to this day, the theory of evolution by natural selection is accepted by the scientific community as the best evidence-based explanation for the diversity and complexity of life on Earth. And this theory proposes that the fittest individual organisms, those with the characteristics best suited to the environment, are more likely to survive and reproduce. So on his travels, Charles Darwin used to collect plants, animals and fossils and took copious field notes. And these collections and records provided the evidence he needed to develop his remarkable theory.
और आज जन्मदिन है भारतीय सिनेमा में दमदार खलनायकों की बात करने वाले मुकेश ऋषि का. 19 अप्रैल 1956 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे मुकेश ऋषि 19 अप्रैल को आज अपना यानी 17वां जन्मदिन मना रहे हैं. जी बिल्कुल. 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने अपनी मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस और प्रभावशाली आवाज के दम पर कई फिल्मों में खतरनाक विलेन की पहचान बनाई.
सो फरत ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक इन हिंदी इन 1993 विद गर्दिश. And then has since established himself rightly as playing notable supporting actor, generally as a villain. And his work primarily in Hindi films and since then in Southern industry has since established himself as a leading actor across India in multiple languages.
बिल्कुल. शगुन, घातक, सरफरोश, सूर्यवंशम, गर्व जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं. तो हमने अपने श्रोताओं के लिए उनकी कई सारी फिल्मों के डायलॉग्स एक साथ मिला दिए हैं. आइए सुन लेते हैं.
आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया.
जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे के खून के साथ अपने हाथ नहीं रंगूंगा, तब तक श्राद्ध कार्य पूरा नहीं होगा. मेरा नाम है बुल्ला शंकर. अब तेरे सीने में ठोकूंगा मैं मौत का किला.
शर्म आती है मुझे कि आज तक मैं तुम जैसे खोखले ठाकुरों का फकर करता रहा. अच्छा हुआ मर गए तुम. बच के मर जाना वरना आज मेरे हाथों मारे जाते. देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा.
वेल मुकेश ऋषि. टुडे इट्स आल्सो द फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स बर्थडे. मारिया शारापोवा ranked as the world number one in women's singles by the Women's Tennis Association for 21 weeks. Sharapova won 36 WTA Tour level singles titles, including 5 major titles, and she's one of 10 women to achieve the career Grand Slam in singles.
और आज अरशद वारसी का भी जन्मदिन है. इन्होंने 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से स्क्रीन पर अपनी शुरुआत करी.
तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले कहीं पे जाम है कहीं प्यास है यही है यार जिंदगी.
अरशद वारसी का सर्किट का किरदार मुन्ना भाई MBBS में काफी सराहा गया था, तो क्यों ना ये भी सुन लेते हैं.
ये सफारी सूट क्या है? एडमिशन के लिए किसको मिलने का?
उधर कैजुअलिटी में जाके फॉर्म भरने का. पेशेंट कौन है?
कोई नहीं.
तो फिर एडमिट किसको करने का है?
भाई को.
क्या हुआ उसको?
कुछ नहीं हुआ.
तो फिर एडमिट क्यों करने का?
डॉक्टर बनने का.
किसको?
अरे भाई को रे. ये अपुन की बात कर रहा है.
मैं भी सोच रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं.
ये चिरकोट, भाई को जितना सहने का था ना सह लिया. चल अभी बोल किसको मिलने का.
बोलता हूँ ना, आपको डॉक्टर बनने का है ना, तो सीधा जाके डीन से मिलिए.
डीन बोले तो?
डीन बोले तो हेडमास्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है ना, वही आपको एडमिशन देगा.
Wow, so his portrayal of circuit in this film, Munna Bhai MBBS, and well, its sequel also, Lage Raho Munna Bhai, for which he won the Filmfare Award for Best Performance in a Comic Role, marked a turning point in his career. Listeners, today we are also remembering James Richard Steinman, composer, lyricist and record producer. Steinman, whose sweeping operatic producing style was a perfect fit for sometimes highly melodic pop of Celine Dion and other singers as well. And he found home on the theatrical stage as well. So let's listen in to one of his creations.
The waves are pounding on the sand tonight. I want to take your hand and make you feel so right. I know I'm ready and I'll never be like this again. And the sky is trembling.
Well, yes, Steinman wrote hits such as Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, and, well, His other single, It's All Coming Back to Me, now reached number 2 on the Billboard charts, and the album as a whole won 1997 Grammy Awards for Best Pop Album and for the Album of the Year. I was telling you about James Richard Steinman, the composer, lyricist and record producer.
और श्रोताओं, भारत की युवा क्रांतिकारियों में से एक अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने भी आज ही के दिन हमें अलविदा कहा। उन्हें देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले युवाओं में गिना जाता है। और इसके साथ ही अब वक्त की घड़ी कह रही है हमें कहना होगा आप सभी से अलविदा। तो शगुन और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।